शांति। ओम शांति कहा जाता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। फिर और बाबा क्या ऐड करते हैं, चरित्र गया तो जन्म जन्म के लिए गया, क्योंकि आगे जन्म भी तो ऐसे ही होंगे, चरित्रहीन के घर में ही जन्म लेंगे। अब वो चरित्र वापस कैसे आए, क्योंकि चरित्र वापस आएगा तो स्वास्थ्य भी वापस आएगा, धन भी वापस आएगा। तो चरित्र कैसे वापस आएगा, वो बाबा कहते हैं योग से, क्योंकि योग से ही तुम पावन बनते हो, तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तो जब चरित्र वापस आ जाता है तो फिर स्वास्थ्य और धन भी बहुत मिल जाता है। तो बाबा कहते तुम्हारा चरित्र योग बल से वापस आता है तो 21 जन्म तक तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। तो 21 जन्म तक वो चरित्र वैसा ही चलता है, वही संस्कार जो यहां से हम निर्माण करते हैं लाते हैं वो 21 जन्मों तक चलते हैं। जैसा संस्कार वैसा ही फिर संसार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अब कोई भी पाप कर्म और आगे मत करो, विकारों के वश बहुत पाप किए और चरित्रहीन बनते गए बनते गए बनते गए, अब उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी और अंत में धर्मराजपुरी में तो सजा भोगेंगे। फिर सब जो भी पाप किए हैं ना वो सब सामने आएंगे। जैसे कोई ने पाप किया, मुजरिम है तो अपराध किया तो उसको सजा मिलती है, तो सजा देने से पहले उसके सारे क्या क्या अपराध किए वो सब उनको बताते हैं, एविडेंस भी बताते हैं, जो गवाह है वो भी बताते हैं, सब कुछ उनको बताते हैं, तो फिर उसके बाद सजा देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहां भी तुमको अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। तो उस सजाओं से बचने के लिए सबसे पहले तो चरित्र सुधारना है, और चरित्र सुधरेगा ही बाबा की याद से। अशरीरी बन जाओ, आत्मिक स्थिति में रहो, बाबा की याद में रहो, तो कैसे चरित्र सुधरता जाएगा। तो कैसे चरित्र सुधरना है, बाबा की हर मुरली से पता चलता है ना, अव्यक्त महावाक्य मिलते हैं तो वो चरित्र सुधारने के लिए ही तो मिलते हैं। हीरे को पॉलिश किया जाता है, जब बाबा अव्यक्त हुए तब अव्यक्त मूल्यां शुरू हुई, तो बाबा ने पहली अव्यक्त मूल्य क्या सुनाई कि हीरे हीरा बनने के लिए तो साकार मूल्या है, क्योंकि साकार मूल्यों से तुम सच्चे हीरे बन जाते हो ना, बड़े अमूल्य बन जाते हो। लेकिन अव्यक्त मूल्या ये उस हीरे को पॉलिश करने लिए, तराशने के लिए और पॉलिश करने लिए। तो तराशते तो साकार मूल्यों से ही है पर पॉलिश हो जाता है और चमकदार हीरे बन जाते हैं, क्योंकि चरित्र सुधर जाता है। तो आज की सारी मुरली इसी पर है। तो चरित्र भी सुधरता है, चित्र भी सुधरता है, संसार ही बदल जाता है। तो बाबा ने फिर दूसरी बात कही है कि तुम्हारी अवस्था की परख कब होती है। अवस्था की परख तब होगी जब कोई बीमारी आती है, उस बीमारी में भी अगर आपका चेहरा हर्षित है, माना आपकी अवस्था अच्छी है। कई तो जब बीमारी आती है तो कितना कराहते हैं, एकदम दर्द होता है तो कैसे करते हैं। बाबा कहते हैं तुमको ऐसे कराना भी नहीं है, मुस्कुराना है। चाहे कितनी भी बीमारी हो, कभी वो बीमारी चेहरे से दिखाई न दे। दादी जानकी को इसकी बहुत फिक्र होती थी। दादी जानकी से कोई पूछते थे, दादी आपकी तबीयत कैसे है, तो दादी को शरीर की तकलीफें तो थी, क्यों नहीं थी, लेकिन दादी कहती थी क्यों पूछ रही हो, क्या मेरे चेहरे से दिखाई देता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहा नहीं नहीं दादी ऐसे नहीं, लेकिन पूछा जाता है, ऐसा ही पूछते हैं ना। तो दादी कहती है मैं चाहे कितनी भी शरीर की तकलीफ हो, लेकिन चेहरे पर वो नहीं आनी चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ अवस्था बहुत अच्छी है। और अवस्था अच्छी है उसकी और दूसरी परख क्या है, कभी रोएंगे नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन रोएंगे नहीं। तो रोना नहीं है, ये अंतर की शक्ति का पता चलता है। रोते हैं तो माना आत्मा कमजोर है। तो देखो बाबा हमें कितना शक्तिशाली बनाते। तो आज 15/11/2025 है और आज बाबा मिलन का भी दिन है। हम सब शाम को प्यारे अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाएंगे। उसका फिर कैसे होगा वो आपको मुरली के बाद सुनाएंगे। मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए, चरित्र सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है, क्योंकि आत्मस्थिति जैसी बनती जाएगी ऑटोमेटिकली संस्कार बदलते जाएंगे। अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। रावण ने दुर्भाग्यशाली बनाया, इसीलिए रावण का अर्थ ही है रुलाने वाला, तो दुर्भाग्यशाली बनाया, रुलाया ही है। द्वापर कलयुग में कितने रोए होंगे हम। और बाबा आते हैं वो सौभाग्यशाली बनाते, हमें रोना मुक्त बना देते हैं, रोना प्रूफ, कभी आंखों से दुख के आंसू ना आए। तो बाबा कहते हैं अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? हम आत्मा कितनी शक्तिशाली है उसकी परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसको कहेंगे? उत्तर, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहे, ये है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। ओम शांति, दो अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात कहाँ आती है? जब स्त्री का पति मर जाता है तो वो फिर दुर्भाग्य कहा जाता है, विधवा नाम पड़ता है। ये कितना कड़वा शब्द है विधवा, तो बाबा कहते हैं स्त्री का पति मर जाता है तो वो भी दुर्भाग्य कहा जाता है, अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहां पर कभी स्त्री विधवा नहीं बनती है सतयुग में। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे नहीं दोनों एक साथ शरीर छोड़ते हैं लक्ष्मी नारायण। इसका मतलब है कि पहले कौन शरीर छोड़ेगा, क्योंकि स्त्री विधवा नहीं बनती है, तो कौन पहले शरीर छोड़ेगा, पहले स्त्री छोड़ेगी। और शरीर की संरचना भी ऐसी बनी हुई है कि शरीर फिजिकली भी भौतिक रूप से भी पुरुष से थोड़ी कमजोर है जरूर, इसीलिए पहले उसको शरीर छोड़ना चाहिए। लेकिन कलयुग में हम देखते हैं हमारी माताएं, भले ही पति ने शरीर भी छोड़ा लेकिन उसके बाद भी कितनी शक्तिशाली रहती है ना। तो इसीलिए दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली की बात है। तो बाबा कहते हैं अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं, वहां दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता है, विधवा नाम ही नहीं होता है वहां। सत्युग में विधवा नाम ही नहीं होता है। मुझे याद है नीचे शांति वन किसने शरीर छोड़ा या पता नहीं मैं कहाँ गई थी, तो उसका पति जिंदा था, कहीं गई थी मैं तो पति जिंदा था लेकिन पत्नी गुजर गई। तो पत्नी के डेड बॉडी को इतना सजाया था, लाल साड़ी पहनाई, या नहीं तो डेड बॉडी को तो सफेद साड़ी पहनाते हैं ना, या सफेद पहनाएंगे कपड़े, लेकिन लाल साड़ी पड़ी थी और तिलक भी था, सिंदूर भी था, मांग भी जैसे सजी हुई थी और जवाहरात भी पड़े थे। तो मैंने कहा ये तो, मैंने कुछ बोला नहीं लेकिन किसी से इशारे से पूछा तो ये लाल साड़ी में ये डेड बॉडी, बोला ये सौभाग्यवती है क्योंकि पति जिंदा है और अगर पति ने शरीर छोड़ा तो फिर वो विधवा हो गई तो वैसे ही वो दूसरा ही रूप हो जाता है। तो वहां सतयुग में सौभाग्यवती है, वहां पति पहले ने शरीर छोड़ेगा। तो बाबा कहते हैं विधवा नाम ही नहीं होता, विधवा को दुख होता है, रोती रहती है, बल साधु संत है। अब दुख तो सबको होता है ना, विधवा को तो होता ही है, तो बल साधु संत भी है, ऐसे नहीं कि उन्हों को कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल भी बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी हो जाते हैं, सन्यासी भी तो होते हैं ना रोगी। यह है ही रोगी दुनिया, सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्री मत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों की कैरेक्टर बहुत खराब है, अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। भगवान का ये डिपार्टमेंट है ना, ये यूनिवर्सिटी, कैरेक्टर सुधारने की यूनिवर्सिटी है। तो कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर से पता चलता है, इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। रजिस्टर रखेंगे तो अपने कैरेक्टर का पता चलेगा कैसी मेरी स्थिति है। हर एक अपना रजिस्टर रखो, चार्ट रखो, कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। तो पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। तो बाबा की याद भी तब आएगी जब आत्मस्थिति होगी, और आत्मस्थिति जैसी बनती जाएगी अपने आप आत्म जागृति होगी, शक्ति आएगी तो चरित्र सुधरेगा। तो बाबा कहते हैं उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। फिर आयु भी बड़ी होती है एक की याद से, शिव बाबा की याद से आयु भी बड़ी होती है। ये तो है ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता है, ज्ञान रत्न है, जिससे बाबा कहते हैं ये रत्न तुम यहाँ पर अनुभव करते हो तो वो भविष्य के सच्चे रत्न बन जाएंगे, पर याद से तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं याद को रत्न नहीं कहेंगे, याद से तो तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, ज्ञान से केवल ही सुधरते हैं। सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, मुझे उसका अभ्यास करना है, देही अभिमानी बनना है, वो इतना ध्यान नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान कोई बस सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, ये 84 जन्मों का चक्र भी तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। इस पर ही समझाना है, 84 के चक्र पर क्या समझाना है, विष्णु और ब्रह्मा। ये 84 के चक्र के ज्ञान में आता है विष्णु और ब्रह्मा। अब शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे, उनके तो कैरेक्टर की बात ही नहीं, वो तो कोई जन्म मरण के चक्र में आता नहीं, शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के दो रूप हैं, ये लक्ष्मी नारायण, वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आते ही पूज्य और आते ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, और साधारण तन चाहिए, क्योंकि बहुत बहस करते थे पहले, तो आप इनको ब्रह्मा कैसे कहते हो, तो फिर इनको बताते थे इनके तन में शिव बाबा आते हैं, तो फिर कहते थे इनके तन में ही क्यों, हाँ वो परमात्मा तो इतना ऊंचे से ऊंचा है, इतना पावन है, ये पतित के तन में आता है, गृहस्थी के तन में आता है, उनको तो किसी साधु के तन में आना चाहिए या कोई शुद्ध पवित्र बच्चे के तन में आना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है, तो आएगा तो पतितों को पावन बनाएगा ना, तो जो पतित है उनके तन में ही तो आएगा, तभी तो पावन बनाएगा। और दूसरी बात बाबा कहते हैं मैं पवित्र ग्रस्त आश्रम बनाता हूँ, तो जो गृहस्थी होगा उसी के ही तो तन में आएगा ना, सन्यासी के तन में सन्यास धर्म थोड़ी शुरू करना है बाबा को। तो ग्रस्त आश्रम को पवित्र बनाना ये भगवान का काम है। तो सत्युग है पवित्र ग्रस्त आश्रम, और इस समय अपवित्र ग्रस्त आश्रम। तो बाबा कहते हैं साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूंजते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ, कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आया। पतित दुनिया में तो एक भी पावन नहीं हो सकता है। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं, कोई तो लेते होंगे ना, 84 का चक्र कहते हैं तो कोई तो 84 जन्म लेते होंगे ना, तो कौन लेते हैं पूरे पूरे 84 जन्म। तो बाबा कहते हैं जो पहले पहले आते होंगे सत्यु के आदि में, एकदम श्री कृष्ण के समय, श्री कृष्ण तो लेता ही है, पर उस समय जो आते होंगे वो पूरे 84 जन्म लेंगे। सत्युग में देवी देवता ही आते हैं, तो मनुष्यों को जरा भी ख्याल नहीं चलता कि 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है ना, सभी तो नहीं लेंगे, पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, तो 84 जन्म हुए ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म सब नहीं लेंगे, अगर सब लेवे तो क्या हो, बाबा कहते हैं एक साथ सब थोड़ी आएंगे और शरीर छोड़ेंगे, एक साथ तो सभी आएंगे भी नहीं, ऐसे नहीं कि सारे सत्युग के आरंभ में सब 84 जन्म लेंगे, धीरे धीरे आएंगे ना, शुरू में जो होंगे जो बाबा कहते हैं 9 लाख, फिर तो वृद्धि तो थोड़ी होगी, तो वो तो फिर कम जन्म लेंगे। तो 84 जन्म हुए ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म सब तो नहीं लेंगे ना, एक साथ सब थोड़ी आएंगे, एक ही साथ सब आ जाए, एक्टर्स भी सब एक ही साथ थोड़ी आते हैं मंच पर, धीरे धीरे आते हैं ना, तो एक साथ सब थोड़ी आएंगे और फिर शरीर छोड़ेंगे। भगवानों वाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गीता में आता अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो, ये 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, ये भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है, ये पढ़ाई है, इसमें 84 की चक्र की ये भी पढ़ाई है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, क्योंकि वो 84 जन्म तो लेते नहीं है ना। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं, सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, क्योंकि सब शुरू में आ जाए फिर सबके 84 जन्म हो तो। अब ये भी नहीं होता है, सारा मदार 84 जन्म में आता है, आना है, तो उसका सारा मदार याद पर है, उसमें भी नंबर वन है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, तो ज्ञान की ज्ञान में तो सहज सब हाई सब बहुत मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि सहज है, लेकिन डिफिकल्ट सब्जेक्ट है याद, उसमें विघ्न पड़ते हैं, तो और उसमें तो बाबा कहते हैं जास्ती मार्क्स मिलती है। डिफिकल्ट यानी मुश्किल जो सब्जेक्ट होता है ना, विषय होता है, उसमें मार्क्स जास्ती मिलती है। उनका प्रभाव भी होता है, स्कूल में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग प्रभाव है, तो अलग सा, तो उसमें कोई तो बहुत प्रभावशाली है, उनमें तो उनके ऊपर तो बहुत स्टडी करना पड़ता है, कोई भी इतना न करो तो भी चलता है ना? तो इसलिए सब्जेक्ट्स में भी क्या होता है, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ सब्जेक्ट भी होते हैं ना, इनमें भी है दो मुख्य, ज्ञान और योग। तो दोनों में से उत्तम सब्जेक्ट किसको कहेंगे, ज्ञान और योग, तो बाबा कहते हैं योग। तो ये है रेस, इसमें मार्क्स जास्ती लेनी है। पहले तो खुद को देखना है, मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर कैसे हैं। अगर मेरे में रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूं। मेरे बाबा कहते हैं जो रोते हैं उनके लिए बाबा क्या कहते हैं, जो रोते हैं वो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार ही नहीं, बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो ना कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो ना। कई आते हैं ना अभी बाबा के बच्चे तो कोई बीमारी है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो लौकिक रिश्तेदार भी आते हैं, अरे आपको क्या हो गया, कहाँ दर्द होता है, क्या होता है, पर जो बाबा का बच्चा होगा ना वो मुस्कुराएगा, वो कहेगा बाबा को याद करो, इन सब ये तो अपना काम करेगा, शरीर ये तो अपना काम करता रहेगा, हिसाब किताब चुकते होते रहेंगे, लेकिन वो बातें मत पूछो, ये तो डॉक्टर जाने, डॉक्टर के साथ शरीर का है हिसाब किताब, मैं तो आत्मा हूं, तो वो उस समय भी ज्ञान देगा ना। तो बाबा कहते हैं बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो ना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है, अंतरात्मा कितनी शक्तिशाली है वो शरीर की बीमारी से परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कड़कने कुड़कने की आवाज भर मिलती है, थोड़ा दर्द होता है जब वो अपने आप को जैसे करवट बदलते हैं तो दर्द होता है, होता है कई बार, तो हमको भी तो बहुत अनुभव हुआ। मैं गिर गई थी तो ये मेरी चार पसलियां क्रैक हो गई थी, चार पसलियां आप सोचो, अब उसमें अगर आप करवट बदलते हैं तो कितना दर्द होता है, लेकिन कैसे बाबा की याद से उसको ठीक किया। तो बाबा कहते हैं, तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, क्योंकि सच्चा पैगाम कौन सा होता है, अब घर चलना है, बाबा लेने आए हैं। तो जो धर्म पिताएं हैं वो पैगंबर नहीं है, क्योंकि घर का रास्ता नहीं बताते, इस दुनिया में कैसे चलना है उसके लिए वो गुण बताते हैं ताकि दुनिया थमी रहे, पर घर जाने का रास्ता तो केवल भगवान ही बताते हैं। तो सच्चा पैगंबर वही है। तो बाबा कहते हैं पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं, बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी है, सब विनाशी है। हाँ, सचमुच आजकल चीजें भी ऐसी बनती है, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें तो बस वो जैसे हाईफाई होते जाते हैं, पुरानी चीजें काम की नहीं होती है, थ्रो यूज एंड थ्रो। तो आजकल तो ऐसी भी ना, बॉल पेन तो ऐसे ही बन गए, यूज एंड थ्रो। मुझे याद है पहले जमाने में शेफर्स पेन, पार्कर पेन, इनकी क्या वैल्यू थी, बहुत वैल्यू थी। तो पेन बॉल वो तो जैसे कि सारा जीवन चलती थी, परंतु आजकल तो बस पेन लो और जल्दी सूख भी जाती है, पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं, इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी है। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट होगी ही नहीं, कोई भी चीज टूटेगी फूटेगी नहीं सतयुग में। वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहां साइंस से कितनी चीजें बनती है, वहां भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। तो बाप कहते हैं तू बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितने तुमने दुख उठाए, दुख देखे, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, फिर वो कलाएं कैसे कम हुई, सर्वगुण का संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, पूर्ण कलाएं थी, फिर वो कलाएं कैसे कम हुई, अभी तो कोई कला ही नहीं रही। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कलाएं कम होती है ना। तुम जानते हो कि ये दुनिया भी पहले नहीं है, फिर वहां हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है, फिर पुराने होते कलाएं कम होती जाती है। सर्वगुण संपन्न ये लक्ष्मी नारायण है। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं, तुम कैसे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनो, ये सत्य नारायण की सच्ची कथा सुना रहे हैं। अभी ये रात फिर दिन होना है, तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर ये सृष्टि भी ऐसे ही चाहिए, संपूर्ण सृष्टि। पांच तत्व भी सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, खाली मनुष्य आत्मा या आत्मा ही नहीं बनती 16 कला संपूर्ण, तत्व भी सतो प्रधान 16 कला बन जाते हैं, उपद्रव नहीं करते। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, नेचुरल शरीर भी सर्वगुण संपन्न, नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है, जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, ये बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में नहीं है, पदमपति करोड़पति, बाबा कहते हैं या कोई भी ऐसे महात्मा वो जो समझते ना हाँ बहुत बड़े हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी तकदीर में ये ज्ञान नहीं है, उनकी तकदीर में नहीं है ये ज्ञान। उनको तो अपना ही घमंड है, बहुत करके गरीब की तकदीर में है, बूंद बूंद से सागर भरता या गरीबों की तकदीर में है। कोई कहते हैं इतना ऊंचा बाप, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए, पवित्र होते ही है सन्यासी, तो सन्यासी के तन में आना चाहिए। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं किसके तन में आता हूँ, मैं आता ही उसके तन में हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा एक दिन भी कम नहीं, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा उसका ही अंतिम जन्म, और वो भी वानप्रस्थ अवस्था उसमें आता हूँ। ते आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसे होता है, बच्चा सतो प्रधान है फिर बड़ा होगा, सतयुग में भी तो ऐसे होगा ना, शरीर में फर्क तो पड़ता जाता है, तो कहाँ बच्चे का शरीर और कहाँ बूढ़े का शरीर, फर्क तो है। तो बच्चा सतो प्रधान है फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम ये शरीर छोड़ फिर सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ, बूढ़ा तो यही कहेगा। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को लगता है क्यों बच्चों की खुशी का पारा नहीं चढ़ता है, इतना नशा क्यों नहीं चढ़ता, बाबा को वो फील होता है खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, तो मेहनत ही नहीं करते तो खुशी का पारा भी कैसे चढ़े, नशा भी कैसे चढ़े। तो खुशी का पारा चढ़ता रहता है जो अच्छी मेहनत करते हैं, शक्ल ही खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वो घर बार मकान आदि याद आता है ना, ये भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। और जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं, होता है ना लौकिक में भी कई बच्चे अब फेल हो गए, माँ बाप को शक्ल कैसे दिखाएं, तो जाकर के सुसाइड कर लेते हैं कि शक्ल नहीं दिखा सकते, तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं फिर बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा, अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे कि हम क्या बनेंगे। बाबा दिखलाएंगे ये विकर्म आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं ट्रेटर बने इसलिए ये सजा मिलती है। ट्रेटर बने माना बाबा को छोड़ा, जाके नाम बदनाम किया बाबा का, माया के हो गए रावण के तो ट्रेटर हो गए, तो इनको बहुत सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। कोर्ट में भी तो बताते हैं ना तुमने ये किया, उसकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था न हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी, कुछ न कुछ रोग आदि रहेगा जब तक कर्मातीत अवस्था न हो जाए। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ तो रह न सके। ये अवस्था तुमको धारण करनी है, अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ये है क्या कि हम जल्दी जल्दी जाएं, है ये पुरुषा, जल्दी जल्दी जाए। नहीं नहीं नहीं, संगम युग बहुत प्यारा है, जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा। पर बाबा तो कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ ये है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आए। जल्दी जल्दी हमारे लिए नई दुनिया बने तो हम जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है, तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है ये, स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, अब तुम्हारा है ये प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। तो इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो तुमको भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर हम गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। होता है ना हीरो का जो पार्ट होता है, हीरो हीरोइन का, पहले तो बहुत अच्छा पार्ट होता है उनका, फिर वो धीरे धीरे उनके जीवन में दुख आता है, कई बातें आती है, विघ्न आते हैं। लेकिन जो हीरो होता है ना, भले वो पार्ट बजाता है वो दुख का पार्ट, लेकिन अंदर में उसको खुशी है, क्योंकि उसको कहानी का तो पता है कि अंत में मैं विजयी होऊंगा। तो भले वो जताएगा दुख, लेकिन जैसे ही वो फिल्म या ड्रामा पूरा होने पर होता है वो फिर जीत लेता है। तो वो दुख का पार्ट भी बजाएगा, भले दिखाएगा दुख है लेकिन अंदर में उसको खुशी है कि हम फिर विजयी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म था, अब अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। तो इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसा जन्म में भी आते हैं, फिर हीरे जैसा बनते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो, ये जीवन हीरे जैसा है, पर उन जो धन के पीछे भागते हैं वो कौड़ियां हैं। तो तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। ये कहते हैं, हम भी टाइम वेस्ट करते थे, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मैं भी जैसे टाइम वेस्ट करता था, बिजनेस थी ना, और सोचता था और बिजनेस बढ़े और बिजनेस बढ़े और कमाऊं और कमाऊं। तो बाबा कहते हैं ये हम भी टाइम वेस्ट करते थे, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो हमको भी कहा शिव बाबा ने, उसको कहा कि अब तो तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो, वो कौड़ियों के पीछे अपना समय मत गवाओ, ये रूहानी धंधा करो। तो क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, ऐसे तो नहीं कि बस पैसे फेंक दिए और सब कुछ दे दिया भागीदार को, नहीं, गया वो भागीदार को सब बताया और हिसाब किताब पूरा किया, और जो उसका हिस्सा था वो लेकर फिर वापस हैदराबाद से में गया, तो बिजनेस वाइंड अप कर दी। तो बाबा कहते पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं, फेंकेंगे भी नहीं। पैसे बिना तो कोई मकान आदि भी थोड़ी मिल सकता है, रोटी कपड़ा मकान ये पैसे से ही आता है ना, ऐसे थोड़ी आता है। आगे चल बड़े बड़े धनवान भी आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे, एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा। अब निमंत्रण बहुत मिलते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, MOU साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आप आकर के वहाँ वैल्यू सिखाओ, क्योंकि वो तो चलो जिससे बहुत संसारी बातें बताएंगे, लेकिन जीवन मूल्य की बातें वो तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही सिखा सकते हो। तो बाबा कहते हैं एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हिस्ट्री रिपीट होती है, आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो, इसलिए वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी इस नाम से एजुकेशन विंग में बड़ा सिलेबस बनते जा रहे हैं, इसमें डिग्री भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं कैरेक्टर के ऊपर तुम बहुत कुछ समझा सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, देवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स है, विकारी चरित्र है, विकारी व्यवहार है। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा, हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहां जाना भी अच्छी अच्छी को चाहिए। कौन जाएगा कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ये ज्ञान देने, जो अच्छे समझदार हो, अच्छा भाषण कर सके। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी एक स्पिरिचुअल संस्था है, बहुत थी पहले, अभी तो पता नहीं, लेकिन वहां पर भी गीता और जो आध्यात्मिक बातें वो ही सिखाई जाती है। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है वहां तुम भाषण करो। श्री कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था, पहले पहले है श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनता है। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं जो और कोई सुना न सके। ये टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है, क्या आता है दिल में, हम विश्व के मालिक बनेंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो अंदर बैठ ये जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भी भासेगा नहीं, कोई दुख दर्द जो कुछ होता आपको ये वो महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम क्या अंदर में सोचेंगे, हमें तो बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है, ब्रह्म लोक व सूक्ष्म वतन को तो विश्व नहीं कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तो तू बच्चों को बनाता हूँ। तो कितनी गुह्य बातें हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। कहाँ भगवान हमको विश्व का मालिक बनाता, और कहाँ रावण आकर के हमको बाबा कहते हैं माया का दास बना देता है। यहाँ जब सामने योग में बैठते हो तो भी याद दिलानी है, आत्मस्मृति हो, बैठो बाप को याद करो, इसलिए बीच बीच में योग में कमेंट्री चलती है ना, तो याद दिलाना पड़ता है कि बाप को याद करो, आत्मअभिमानी हो, बैठो। 5 मिनट बाद फिर बोलो, बाबा के महावाक्य भी सुनाते हैं, ड्रिल बाबा जो कराते हैं वो भी योग में बताते हैं। तो 5 मिनट बाद फिर बोलो, तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, बैठे हैं योग में या और बाहर गई बुद्धि, इसलिए 5-10 मिनट के बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो ना, बाप को याद करते हो, आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो, तो खुद का भी अटेंशन रहेगा जब ये सुनेंगे। बाबा ये सब युक्तियां, हाँ बाबा ये सब युक्तियां बताते हैं, घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा ना, वो भी खड़े हो जाएंगे, मना को स्थिर हो जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, भगवान को कहते हैं खिवैया मेरी नैया को पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते, पार लगाओ तो कहाँ ले जाओ, हाँ वो खिवैया है, कैसे हमें पार ले जाते वो भी नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प तुमने कितनी भक्ति की। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो, क्यों बैठते हो बाबा की याद में, तुम बैठते ही हो पाप कटने लिए, तो फिर पाप करने थोड़े चाहिए। बाबा की याद में बैठते हो पाप कटने के लिए, परंतु फिर उठे और फिर कोई ना कोई गुस्सा किया, ये किया वो किया, तो पाप बना लिया। तो बैठे याद में बाप पाप कटने लिए और फिर जाके पाप बनाया। तो बाबा कहते हैं फिर थोड़े पाप कर सकते हो, तुम बैठते हो पाप कटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़े चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर वन ये पुरुषार्थ है, कौन सा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये नंबर वन पुरुषार्थ है। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाए। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना, बाबा कहते हैं अपने को शरीर समझना ये भी एक कड़ी बीमारी है। बार बार देह अभिमान में आना, ये देह समझना ये भी कड़ी बीमारी है, माना देह अभिमान की कड़ी बीमारी है। इसीलिए ही सब रसातल में चले गए हैं, सब जैसे पाताल में चले गए हैं, नीचे चले गए हैं, नर्क का भी निचला भाग रसातल में चले गए हैं। उनका फिर उनको फिर सेल्वेज करना है, अब इतना नीचे चले गए हैं तो उनका उनको फिर पार करना है, उनका उद्धार करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा कभी भी माया का दास नहीं बनना है, अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं। खुशी रहे हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। वरदान अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। सर्व अनुभव पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार में उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो, रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। स्लोगन संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। संतुष्ट मणि कौन? संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अव्यक्ति सारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, हठ योगी अपने श्वास को रोकते हैं उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को रोकते नहीं हैं, लेकिन अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। वो तो रोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तुम रोको, रोकते नहीं हो, लेकिन जितना समय जैसा संकल्प करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो और अभी अभी एक की लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज तो बाबा मिलन का दिन है और जो पार्टी में आए हुए भाई बहने हैं और मधुबन में ठहरे हैं, मधुबन में ठहरे हैं वो हाथ उठाए, मधुबन में ठहरे हैं, नीचे से आए हैं वो नहीं, जो मधुबन में ठहरे हैं यहीं तीन चार दिन रहे, तो क्योंकि जो नीचे से आए हैं उनको तो सौगात नीचे मिली होगी या कल मिलेगी, बाबा के मिलन के बाद कल मिलेगी, पर जो यहाँ ठहरे हुए हैं फिर रात नीचे जाएंगे फिर वापस आएंगे या जो भी, तो आपकी सौगात आज होगी यहाँ पांडव भवन में, योग के बाद हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, वहाँ शशि बहन आपको सौगात देगी। जो यहाँ रुके हुए हैं नीचे से आए हुए एक दिन वाले नहीं, तो वो ही जाएंगे यहाँ, और बाकी तो जो नीचे नहीं भी जाएंगे क्योंकि नीचे कर्नाटक जोन आया है और बहुत है ज्यादा, 20,000 से तो ज्यादा हो गए होंगे। कल ही हम गए थे, देखा इतनी भीड़ है जो बात मत पूछो। तो हाँ, तो पांडव भवन में जो भी पार्टी के भाई बहन ठहरे हैं वे मुरली क्लास के तुरंत बाद हिस्ट्री हॉल में बैठे जहाँ पर आपको बाबा की सौगात दी जाएगी। तो इसलिए अगर नीचे नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ ही आप पांडव भवन में सुन सकते हैं। ओम शांति भवन में तो ये सब निकाल दिया है स्क्रीन और वो ये प्रोजेक्टर, लेकिन मेडिटेशन हॉल में और बाहर आंगन में बड़ा स्क्रीन लगाएंगे, मेडिटेशन हॉल में स्क्रीन है तो वहाँ आप देख सकेंगे। नीचे आंगन में भी बहुत बड़ी टीवी है तो वहीं बैठकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले 5 से 6 बजे तक सूरज भाई का क्लास होता है, फिर 6 से 6:30 बजे तक फिर भोग लगता है और 6:30 से 8 बजे तक बाबा मिलन की मुरली चलती है। इसलिए जो नीचे जाएंगे वो तो फिर वापस भी आएंगे या वहीं रहेंगे आपके ऊपर। बाकी ये प्रोग्राम है आज का, डबल विदेशी तो सब जाएंगे, जो डबल विदेशी नहीं जाएंगे वो हाथ उठाएं। दोज डबल फॉरेनर्स हु विल नॉट गो टू शांति वन टुनाइट रेज योर हैंड, ऑल विल गो। सो आफ्टर मेडिटेशन प्लीज स्टे बैक, आई विल टेल यू योर प्रोग्राम। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। सबका नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन, सब जो भी पार्टी में आए हुए भाई बहने हैं वो सब ऊपर जाएंगे नाश्ता भोजन करने, यहाँ आपका भोजन नहीं होगा। जो जो कल रात को आए या आज सुबह आए हैं भाई बहन ने वो हाथ उठाए, हाँ जो आ जाए फिर अभी जाएंगे। अच्छा, सबका नाश्ता ऊपर बड़े डाइनिंग हॉल में है, अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और फिर डबल विदेशी बैठे रहेंगे। ऑल डबल फॉरेनर्स विल स्टे बैक एंड आई विल अनाउंस टुडेज़ प्रोग्राम।